ओम शांति। आप आए हैं यहां, ये हमारा सौभाग्य है। दिल से स्वागत आप सभी का बारंबार है। प्यारे बाप दादा, सभी मधुबन निवासियों और ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। प्रकृति भी आप सभी का सुंदर अभिनंदन कर रही है। आप सबको ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि जैसे हम सूक्ष्म वतन में आ गए हैं। किस किस को ऐसा अनुभव हुआ मधुबन आते ही ज्ञान सरोवर? राइट, तो फरिश्ते बन के तो हम सूक्ष्म वतन में चलेंगे ही, लेकिन बरसात में मधुबन का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे पूरी तरह सूक्ष्म वतन बन जाता है। तो आप सब फरिश्ते जो यहाँ पधारे हैं, सूक्ष्म वतन का सुंदर अनुभव अगले 3-4 दिनों तक करेंगे। ये भी परम सौभाग्य की ही बात है कि हम गहन योग तपस्या भट्टी के लिए पधारे हैं और उस मास में पधारे हैं जो मास विशेष दीदी का मास है। और दीदी का स्लोगन हम सब जानते हैं, जो समय की भी पुकार है, कि अब घर जाना है। तो यहां से वापस अपने घर जाएंगे या ऊपर की तैयारी? घर जाएंगे लेकिन घर की स्मृति को लेकर जाएंगे, और यही लक्ष्य इस सुंदर भट्टी का है। तो हम अपने आप को सजाएंगे, श्रृंगारेंगे। 3 दिन पूरी तरह से हमारे पास बाबा ने एक सुंदर अवसर हम सबको प्रदान किया है। तो दिल से पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं मधुरवाणी ग्रुप, नितिन भाई आ रहे हैं, तो बहुत ही सभी ज्ञान सरोवर निवासी हर्षित हैं, आदरणीय दीदी जी भी, जिन्होंने दिल से आपको आमंत्रित किया है। उनके हृदय में बहुत प्यार, बहुत सम्मान और साथ ही आप सबकी उन्नति का एक ओना है। तो हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बड़े हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तो दीदी जी की ओर से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक हाथ से धन्यवाद का भी हाथ जरूर दीदी जी के लिए। और मंच पर हमारे सभी भाई बहनें उपस्थित हैं। दीदी के साथ नीता बहन जी हैं, सुमन बहन जी हैं, संजय भाई जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, यदि संजय भाई हों तो वो भी मंचासीन हो जाएं। तो हमारे मधुर वाणी ग्रुप के भाई बहने जब तक आए, आप सबसे ये सुंदर अनुरोध जरूर रहेगा कि आप हमेशा ही अपने डायरी पेन के साथ, दीदी का मास है हम जानते हैं, दीदी एक बहुत ही अच्छी गॉडली स्टूडेंट रही, फ्रंट रो पे बैठने वाली और साथ ही साथ डायरी पेन लेकर के हमेशा क्लास में उपस्थित रहने वाली। तो हर क्लास में डायरी पेन लेकर के आप उपस्थित रहिएगा। चलिए, मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नितिन भाई को और गोविंद भाई को, जो आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, स्वागत गीत लेकर आ रहे हैं। नितिन भाई को आप जानते हैं, इनकी आवाज बाबा ने बहुत अच्छी, हाँ, तालियों से आप जरूर अभिनंदन करें, स्वागत करें। कई कैसेट्स में आप नितिन भाई के गीत सुनते हैं, बाबा ने बहुत ही मधुर आवाज से आपको नवाजा है। और साथ ही गोविंद भाई बहुत अच्छी गीतों की भी रचना करते हैं, और जो ओम शांति मीडिया आपके घर तक पहुंचता है तो उसके निर्माण में आपकी अहम भूमिका रहती है। तो हमारे दोनों ज्ञान सरोवर निवासी भाइयों का हम पहले अभिनंदन करेंगे तालियों से, फिर स्वागत गीत से हमारे दोनों भाई आपका स्वागत करेंगे।
ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले। बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आदि वाले दिन बाबा फिर से हमें दिखाते हैं। 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में कराते हैं। बज रहे विनाश के हैं उधर नगाड़े। दिख रहे इधर है नवयुग के नजारे। अग्रिम दल के रत्नों का रंग रंग लाया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले। बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अंतर्मुख हो आओ हम योग का करें प्रयोग। मनसा सेवा सकाश में मिलके करें सहयोग। शांत और एकांत मिला तप का ये मौका है। उड़ो पंछियों उड़ने से अब किसने रोका है। वाह बाबा वाह ड्रामा दिल ने अब गाया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले। बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ऐसी भट्टी हो जो यादगार बन जाए और भट्टी की कोई दरकार ना रह जाए। योग भट्टी की ज्वाला आओ ऐसी जलाए, संसार से पुराने संस्कार सब जल जाए, निर्विघ्न रहने करने का मौसम आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले,
शुभ स्वागतम
शत स्वागतम
शत स्वागतम
शुभ स्वागतम
शुभ स्वागतम
शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर स्वागत गीत के लिए, जो केवल स्वागत ही नहीं था लेकिन सुंदर शब्द जो हमेशा ही याद रखे जाने योग्य हैं इस भट्टी के दरमियान, कि इस चार दिन में ही हमें 14 वर्ष की तपस्या कर लेनी है, और ऐसी तपस्या ऐसी भट्टी जिससे और फिर किसी दूसरी भट्टी की दरकार ना रह जाए, राइट। तो हमें ऐसे डूब कर सुंदर तप करना है, साधना करनी है। तो इन 4 दिनों में हम कैसे 14 वर्ष की साधना कर लें, कैसे एक एक पल को सफल कर लें, क्या ऐसा करें जिससे पूरी तरह मन आनंद विभोर और बाबा की याद में डूब जाए, हम वो बन जाएं जो हम बनना चाहते हैं, वो बन जाएं जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं। तो क्या उद्देश्य और लक्ष्य हो हमारी इस भट्टी का, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुमन बहन जी को, जो बाल्यकाल से ही बाबा की गोद में पली बढ़ी। अपनी इंजीनियरिंग की एजुकेशन पूरी करते ही आपने अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, मैनेजमेंट ट्रेनर और एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय सुमन बहन जी।
ओम शांति। मंचासीन परमादरणीय निर्मला दीदी जी, आदरणीय नीता बहन, रूपेश भाई, संजय भाई और सभा में उपस्थित बाबा के दिल तख्त नशीन होली हंस आत्माएं, जो दूर दूर से बाबा के घर ज्ञान सरोवर पहुंचे हैं, आप सभी का इस ज्ञान मानसरोवर में तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी हिम्मतवान जरूर है कि समय की नाजुकता को देखते हुए भी हिम्मत रख करके आप सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाबा के घर में अपनी झोली बाबा के शक्तियों से भरने के लिए पहुंचे हैं, और साथ साथ आप सभी भाग्यशाली भी हैं। न केवल भाग्यशाली लेकिन पद्मा पद्म भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? बाबा के बने हैं वो तो भाग्य है ही है, लेकिन यहाँ पहुंचे हैं भट्टी करने के लिए इसका भी भाग्य है। फरवरी मार्च तक तो भट्टियां चली ज्ञान सरोवर में, लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड वेव आने के कारण से फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। फिर आपका जो जब टर्न आया ना, फिर खुल गया, है ना। बीच में जो अप्रैल में जून जुलाई एंड तक भी जो टर्न था सभी का फिक्स था एक्चुअली, दीदी ने सभी को डेट्स दे दी थी लेकिन लॉकडाउन होने के कारण से उन सभी का कैंसिल करना पड़ा। जिन्होंने रिजर्वेशन कराया था और उन्होंने भी कैंसिल करना पड़ा उनको भी, लेकिन ठीक जब आपका टर्न आया वो खुल गया तो सभी पहुंच गए। तो ज्यादा तपस्या की होगी आप सभी ने, सभी ने अर्जी डाली होगी बाबा को ना, तो आपके अर्जी एक्सेप्ट हो गया बाबा, बाबा ने एक्सेप्ट कर ली तो पहुंच गए। यहां पहुंचे हैं किस लिए? भट्टी तो करना है लेकिन अपना भाग्य भी बढ़ाना है ना। भाग्य था पहुंचे लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है ना, यहां पहुंचे हैं फिर वो भाग्य बढ़ाना है तपस्या करके, है ना। इस तपस्या में क्या करेंगे 3 दिन, क्योंकि इतना डायमंड अपॉर्चुनिटी सबको मिला हुआ है जो किसी और को नहीं मिला है। नहीं तो कोरोना अगर नहीं होता इन दिनों में विंग्स का प्रोग्राम होता है ना, कोरोना हो गया तो इसके कारण से सभी बीके भाई बहनों के लिए एक लॉटरी मिल गया, तो सभी के लिए भट्टी का कार्यक्रम दीदी जी ने रखा है ना। ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है ना हम सभी के लिए, क्योंकि इतने लंबे काल ज्ञान सरोवर को कंस्ट्रक्ट होकर के इनॉग्रेशन होकर के 26 इयर्स हो गया, तो इन लंबे अंतराल में भट्टियां नहीं हुई थी, केवल कॉन्फ्रेंसेस गेस्ट के लिए प्रोग्राम्स हुए थे ज्यादातर करके, लेकिन बीके भाई बहनों के लिए भट्टी अभी इस साल हो रहा है, तो इसका पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। तो कैसे लाभ उठाएंगे? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अंतर्मुक्ता के गुफा में हम सभी बैठे। ये अच्छा है लॉकडाउन था वहां मिलने जुलने के लिए मौका नहीं था, यहाँ आए मिलने जुलने के लिए मौका है, इतने सारे लोगों से मिलने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सारा कल भी वही करते आए हैं ना, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन अभी बाबा से मिलन मनाने का समय है, अपने आप के साथ मिलन मनाने का समय है। हम सभी के सामने ये चैलेंज है, इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी क्या हम मौन रह सकते हैं? क्योंकि जब तक हम मौन नहीं रहेंगे तब तक तपस्या का जो बल है वो हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो महसूस हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लक्ष्य जरूर रखें कि 3M का मौन, एक है मुख का मौन, दूसरा है मन का मौन, और तीसरा है जो बहुत जरूरी है वो है मोबाइल का मौन, है ना। मौन की महत्वता क्या है? क्योंकि जब तक हम बाहर के दुनिया के साथ कनेक्शन काटते नहीं हैं, डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक अपने आप के साथ बाबा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब वहां होते कर्म क्षेत्र पर कनेक्ट होना जरूरी होता है, कर्म है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहां जब आए हैं खास तपस्या के लक्ष्य से तो फिर अपने आप के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए मौन जरूर अपनाएं। मुख का मौन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ताकत शक्ति ड्रेन आउट होता है तो बोलने से, विचार भी फिर मन भी भटकता है बोलने से, तो इसीलिए मुख का मौन बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में भी ये पता चली आई है, बहुत नौदा भक्ति जब करते हैं तो मौन रहते हैं, और स्टूडेंट्स भी अगर बहुत हायर स्टडीज कर रहे होते हैं, IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सब चीजों से अपने आप को कट ऑफ करके एक कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, है ना, तब जाकर के वो आईएएस इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाते हैं या पास हो पाते हैं। तो माना सभी से कट ऑफ, ये जो हमारा जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम बहुत साधारण रीति से नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए उसकी गहराई में जाना है। बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस आप सभी को मिलेगा इन 3 दिनों में, बहुत अनुभवी आत्माओं के, तपस्वी आत्माओं के क्लासेस, और बीच बीच में एक्टिविटीज भी है, बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सभी के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए उसका पूरा लाभ लेना है तो मौन रखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ मन का मौन, मन कहीं भी भटके नहीं, इधर उधर भटके नहीं, हाँ इसने नहीं मौन नहीं रखा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मन से भी सभी से कट ऑफ, देखते हुए न देखे, है ना, इसका अभ्यास यहाँ करें, देखते हुए न देखे, इतने न्यारा प्यारा अपना स्थिति बनाए। और तीसरा जो बहुत मुश्किल है मौन, वो है मोबाइल का मौन। जब से आपने खरीदा होगा मोबाइल तब से आप उसको ऑफ किया है, ऑफ किया है, एक दो घंटे के लिए ऑफ किया होगा, लेकिन एक दिन 3 दिन के लिए कभी ऑफ किया है, उसको भी रेस्ट की जरूरत है। जब हम थक जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं, मोबाइल को कभी भी हम रेस्ट नहीं देते हैं। तो अभी समय है मोबाइल को रेस्ट देने की, क्योंकि अगर मोबाइल है तो कुछ भी काम नहीं है, तो ये आदत बन गया है, ये संस्कार बन गया है, ब्राउज करने का, व्हाट्सएप खोलने का, कुछ काम नहीं। फिर भी कहेंगे बेंजी हम कुछ देख नहीं रहे, लेकिन ज्ञान योग का ही कुछ बातें हम कर, उसका भी आधार क्यों है। बाबा कहते हैं साधनों के ऊपर आधार नहीं, साधना करना है, साधना करना है तो निराधार बनना है। इतने अच्छे अच्छे क्लासेस मिल रहे हैं और कितने अच्छा वाइब्रेशन है यहाँ का, इतना अच्छा वातावरण है, उसका आनंद लेंगे, इसका जो प्रकृति भी कितना सुंदर है उसका आनंद लेंगे। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आज रात को भोजन के बाद सोने से पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। अगर जरूरी कारोबार है तो जिनको भी बोलना है, जो भी कारोबार पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद सोने से पहले संकल्प करके सोए स्विच ऑफ करें और बाबा को अपने आप को अर्पण कर लेंगे कि बाबा आप जो देना चाहे वो मैं तैयार हूं लेने के लिए। अगर मैं मेरा मन और बुद्धि क्लियर नहीं रखूंगी, फ्री नहीं रखूंगी, बाबा जो देना चाहता है वो हम ले नहीं पाते हैं। अगर इतना बिजी रखेंगे अपने मन और बुद्धि को, बाबा बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन हम अपने लाइन बिजी रखते हैं, है ना, उसको फ्री रखना है। फ्री रखने के लिए इन सभी चीजों से फ्री रख करके मन और बुद्धि को बाबा को समर्पण कर लेंगे। किस लक्ष्य से बाबा ने आप सभी को यहां बुलाया है? इतने सारे लोग चाहते हैं ज्ञान सरोवर में भट्टी करने की, लेकिन उन सभी को ये चांस न मिलकर के आपको मिला है, बाबा ने आपको बुलाया है, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होगा ना, कुछ देना चाहता है बाबा आपको। लेकिन यहां आकर के भी बुद्धि अगर ब्लॉक है कि बहुत सारी चीजों में बिजी है, तो हम बाबा की शक्तियों की अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मन और बुद्धि को बाबा में समर्पण करके बाबा जो देना चाहे लेते हुए अपनी झोली को भर लेंगे। आज का वरदान भी बाबा का बहुत सुंदर था। बाबा ने के कहा, सभी ने सुना होगा ना आज की मुरली, बाबा ने ये कहा कि जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है, आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकते, ऐसे जो कंबाइंड है ना, ऐसे हम अभी किसके साथ कंबाइंड होना है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर के इतना अटूट संबंध बाबा के साथ जोड़े, तो कभी भी, क्योंकि संगम युग के अंतिम समय तक तो बाबा का साथ है, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सारा कल बाबा नहीं मिलने वाला है, है ना। तो जो भी लेना है, जो भी प्यार की अनुभूति करनी है, शक्तियों की अनुभूति करनी है, वो हम बाबा से ले, अपने संबंध इतना अटूट करे, इतना मजबूत करे इन तीन दिनों में। अगर सेपरेट भी करना चाहे, वो सेपरेट ना हो पाए, बिछड़ ना पाए, तो इतना अटूट संबंध करके यहां से जाने से पहले वो झोली भर के आप सभी जाएंगे। और ये तीन दिन बहुत यादगार वाली भट्टी जरूर रहेगी, ये ना केवल आशा है लेकिन विश्वास जरूर है आप सभी के प्रति। और सभी ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहने, दीदी सभी खुश है आप सभी यहाँ आए हैं, बाबा का घर फिर से भरपूर, फिर से जगमगाता हुआ, आप सभी आए हैं, पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 3 M सभी को दे दिए, और सभी इस 3 M का ध्यान रखेंगे ना, जरा हाथ उठाए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति, कार्य तो बाद में भी होते रहेंगे, ये साधना का समय है, भरने का समय है, जैसे बहन जी ने कहा, और कोरोना भी हमें यही सीख दे के गया या जा रहा है अपने नाम के अनुरूप, कि करो ना, करो ना, तीव्र पुरुषार्थ करो ना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो ना, बाप समान बनो ना, कब बनोगे, तो वो याद दिलाने के लिए आया है कि अब करो ना, करो ना, तो अब हमें करना है। तो बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत लगन के साथ हम गहराई में उतरेंगे, और अगले 3-4 दिन बस मैं और मेरा बाबा इसी ध्येय से, जैसे द्रोणाचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों से पूछा तीरंदाजी करने से पूर्व, वो पक्षी को दिखा रहे थे और कहा कि पक्षी के नेत्र पर निशाना लगाना है, पूछा कौरवों से क्या दिख रहा है, गुरु जी पेड़ भी दिख रहा है, आसमान भी दिखाई दे रहा है, जमीन भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, सब साइड हो जाओ। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, कहा बस पक्षी का नेत्र और नेत्र का भी बिंदु जहां मुझे निशाना लगाना है। तो हमें भी बस अपना बिंदु, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, जो हमें करना है, जो हमें बनना है, वही इन 3-4 दिनों में दिखाई दे, क्योंकि हम सभी सच्चे सच्चे अर्जुन हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी शुभकामनाएं लेकर हमारे बीच हैं आदरणीय नीता बहन जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका भोपाल से हमारे बीच हैं, हम सबको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगी, ताकि हम सब में वो बल, वो शक्ति आए कि हम अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना पाए। आदरणीय नीता बहन जी,
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हम सबकी अति प्यारी परम आदरणीय दीदी जी, मीठी प्यारी सुमन बहन जी, हमारे रूपेश भाई जी, संजय भाई जी, सभा में उपस्थित सभी भट्टी में आए हुए भाई और बहने, बड़ा ही शुभ दिन है जब बाबा के निमंत्रण पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा बहन जी बता रहे थे, बहुत भाग्य है हमारा जो हमको चांस बाबा ने दिया और हम कोटों में कोई मैं भी कोई विरले हैं जो यहां पहुंचे हैं, तो सभी एक बार अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे कि ये चांस हमको मिला। मैं हर बाबा का बच्चा विशेष में भी विशेष हूं। आप देखिए जो आप 3 दिन यहां बिताएंगे आपकी सेवा के लिए कितनी बड़ी टीम है जो यहां कार्य करेगी। आप यहां आने वाले हैं, आपके लिए रूम तैयार हुए, आप यहां आने वाले हैं, क्लासेस कौन कौन कराएगा वो अलग टीम तैयार हुई, आप भोजन पर जाएंगे, नाश्ते पर जाएंगे, वो सेवा करने वाले अलग भाई बहन आपकी तैयारी में होंगे। तो ये कोई साधारण आत्माएं नहीं जो हमारी सेवा में यहां उपस्थित हैं, ये वो तपस्वी आत्माएं हैं जिनको बाबा ने चुन चुन कर यहां एकत्रित किया है। और ऐसी तपस्वी आत्माओं का लाभ हम यहां लेंगे, तो इसलिए जरूर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को भरपूर करेंगे ज्ञान से, योग से, श्रेष्ठ संकल्पों से, बाबा के प्यार में डूब जाएं। जहां हम पहुंचे हैं नाम है ज्ञान सरोवर। पहले कभी सुनते थे कि ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाते हैं, तो ये वही मान सरोवर है, ज्ञान सरोवर है, जहां हम ज्ञान और योग की डुबकियां लगाएंगे, परी यानी अपना परिवर्तन करेंगे। और ये चांस हमको फिर आगे कब मिलेगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि मुझे बाबा की सेवा में लगे हुए लगभग 39 ईयर्स हुआ और मैं देख रही हूं ये पहली बार ज्ञान सरोवर को 25-26 साल हुआ, लेकिन ग्रुप लाने का, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे ग्रुप्स आते थे, लेके भी आए, लेकिन भट्टी का चांस पहला मिला है। और उसमें भी चांस कितनों को मिला है, बहुत थोड़ों को मिला है। तो हम सभी उस चांस का फायदा उठाकर चांसलर बने। जो भी समय हमको खाली मिलता है बाबा के कमरे में बैठे या फिर जो क्लासेस मिलती हैं उनकी स्टडी हम करें, बहुत अच्छा अनुभव आप यहाँ करके जाएंगे। क्योंकि बाबा की नज़र अवश्य ही हम बच्चों के ऊपर है, जैसा सुमन बहन जी बता रहे थे कि आपने बाबा को अर्जी डाली होगी, कोई घोर तपस्या किया होगा, भले इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में, जिसका फल बाबा अभी हमें दे रहे हैं। तो इस समय के महत्व को जानकर, जीवन की वैल्यू को जानकर हम सभी बातों का लाभ उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप यहां से भरपूर होंगे, इतना कुछ लेकर जाएंगे कि आपको देखकर दूसरों का भी सोच अवश्य चलेगा कि जो आप लेकर आए हैं वो सब कुछ हमें भी मिले, वो खुशी, वो शक्ति, वो शांति, वो ईश्वरी प्यार, वो एक आत्मा की ताकत जरूर आप अपने में भरेंगे। और पूरा जो शेड्यूल आपको मिला हुआ है अमृत बेले से लेकर के रात्रि तक, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, कुछ भी उसमें से मिस ना हो। तो आपको बहुत खुशी होगी, बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और जो आपकी सेवा में उपस्थित हैं उनकी भी ढेर सारी दुआएं ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप इस भट्टी का लाभ उठाएंगे और सच्चा सोना बनकर जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया नीता बहन जी आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए, क्योंकि दुआएं शुभकामनाएं जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। और हमारे बड़ों की शुभकामनाएं सचमुच हमें उड़ाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, उन्नति कराती हैं। और जैसे आपने कहा, ज्ञान सरोवर जैसे डुबकी लगा के हम यहाँ परी बन जाएं, और परी अर्थात परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसे देखकर सचमुच लोग कहें कि वाह क्या बात है, राइट, यही ध्येय होना चाहिए। और इस परिवर्तन के लिए, परी बनने के लिए, अभी से हमें थोड़ा एकांत की और अलग अलग बैठने की जरूरत है मुझे लगता है। तो जो एक दूसरे के बहुत समीप बैठ गए हैं उनसे अनुरोध है कि आप एक एक दो दो चेयर छोड़ करके बैठें। अब यहाँ बस एक बाबा, दूजा न कोई, राइट, कोई संगी साथी नहीं। इस बात की प्रैक्टिस तो यहाँ ही करनी है ना। हो सकता है आपका कोई बहुत नजदीकी हो जिससे बड़ा स्नेह हो, लेकिन यहाँ साधना एक बाबा, तो एक दो चेयर छोड़ करके ही आप सभी बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखें, मास्क लगा करके जरूर रखेंगे, और मास्क भी पूरा कवर करके रखें, ये भी समय की मांग है जिसका हम सबको ध्यान रखना है। तो आइए अब चलते हैं, जैसे रोशनी होती है दीपक से, ऐसे स्वयं में हम सब ज्ञान का प्रकाश भरें और एक सुंदर दीप प्रज्वलन से इस भट्टी का आगाज करें। तो हम सब की एक सुंदर परंपरा है कि दीप प्रज्वलन से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा दीदी जी से, नीता बहन जी से, सुमन बहन जी, और हमारी सभी टीचर्स बहनें जो सभा में उपस्थित हैं, सभी मंच पर आएंगे, हमारी टीचर्स बहनें भी इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और हम सब भी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने मोबाइल को ऑन करके उसका टॉर्च ऑन कर रखें, क्योंकि इस दीप प्रज्वलन में आप भी शामिल हों अपने टॉर्च के साथ। हमारी दीदियां मंच पर दीप प्रज्वलन करेंगी, और आप सबके हाथ में भी जिनके मोबाइल है आप अपने टॉर्च ऑन कर लें। तो एक बड़ा ही सुंदर सा दृश्य, आत्मदीप का एक प्रतीक, बाबा को आह्वान करते हैं और साथ ही इस भट्टी का आगाज करते हैं।
ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने स्वर्ग उतारा है, प्रभु ने स्वर्ग उतारा है। ओ ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। अंबर से धरती पर सवारा है, अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने स्वर्ग उतारा है, प्रभु ने स्वर्ग उतारा है।
कितना सुंदर दृश्य था, अगर आप मंच से नीचे देखते तो ऐसा लग रहा था कि परमधाम नीचे उतर आया है और आत्माएं ज्योतियां चमक रही हैं। ये दीप हमें याद भी दिलाता है और हम इसे पक्का भी कर लें, ये दीप बुझे ना, मेरा आत्मदीप जलता रहे, औरों के भी मस्तक पर चमकते हुए आत्मदीप को मैं निहारता रहूं और दीप राज बाबा मेरे हृदय में बसे रहें, कभी मैं उनके पास और कभी वो मेरे पास। तो इस दीप प्रज्वलन के इस सुंदर भाव को अपने हृदय में हम जरूर समाएंगे और चलिए इसी भाव के साथ अब उनकी ओर चलते हैं जो वात्सल्य की मूर्ति है, जिन्होंने बहुत ही दिल से बहुत प्यार से आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है और जिनका दिल बहुत ही गदगद है आप सभी को यहाँ देख करके, और जिन्हें देखकर स्वयं बाबा भी गदगद होते हैं, साकार मुरली में जिन्हें बहुत प्यार से याद करते हैं, निर्मल आश्रम कहकर जिनके सिर पर हाथ रखकर बाबा ने यज्ञ के सुंदर श्रेष्ठ और विशाल सेवाओं की जिम्मेवारियां प्रदान की हैं। मैं देखता हूं कि इतनी दीदी व्यस्त रहते हैं लेकिन कभी भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कितनी हल्की, कितनी लाइट और इतनी एक्यूरेट कि जब हम जो समय कहते हैं दीदी को, दीदी उस समय उपस्थित हो जाती हैं। ये आध्यात्म का जो गहन बल है दीदी के अंदर, हम सब बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो हम सबको ऐसी प्यारी दीदी मिली हुई हैं, जिन्हें बाबा ने अभी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की भी एक श्रेष्ठ जिम्मेवारी दी है। तो हम एक बार करतल ध्वनि से दीदी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे और इस जिम्मेवारी में दीदी हम सबकी दुआएं शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बाबा ने कभी कहा था कि ऐसी यदि 21 कुमारियां मुझे मिल जाएं डॉक्टर निर्मला जी जैसी तो मैं संसार को स्वर्ग बना दूं। ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी दिव्य विभूति हम सबके सम्मुख हैं। तो इससे पूर्व की दीदी से मैं अनुरोध करूं कि दीदी अपना आशीर्वचन हम सबको दें। सुमन बहन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो जो भाई बहने आए हैं उनसे दीदी को परिचित कराएं।
ओम शांति। इस ग्रुप में लगभग 300 भाई बहने आए हैं दीदी। दिल्ली मोहम्मदपुर से जो भाई बहने आए हैं वो भाई बहने उठ खड़े रहेंगे। और साथ साथ जो दिल्ली के अलग अलग स्थानों से, शक्ति नगर और अलग अलग सेंटरों से जो भाई बहने आए हैं दिल्ली, वो भाई बहने उठे। और है अच्छा थोड़े हैं वहां बस। अच्छा बैठे। रेवाड़ी, रेवाड़ी से जो भाई बहने आए हैं और पंजाब, पंजाब के अलग अलग सेंटर से जो भाई बहने आए हैं, भोपाल, भोपाल से जो भाई बहने आए हैं, सभी का स्वागत है। और इसके अलावा कहीं और से जिनका नाम नहीं लिया है, कोई ऐसे है? कहां से है? हरियाणा जिंद, अच्छा जिंद से, सभी जिंद से हैं, धनबाद से है, धनबाद जिंद, उसके अलावा महाराष्ट्र कोल्हापुर से भी है, और कहीं से सारंगपुर ओरिस्सा से भी आए, नवरंगपुर, नवरंगपुर ओरिस्सा से भी आए हैं। वेलकम बेटे, अभी हम देवी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी यहाँ आए हो तपस्या द्वारा कमाई करने, और कमाई में घाटा ना पड़े ये ध्यान रखना है, व्यर्थ संकल्प आदि ना आए, घर बार धंधा धोरी सबको भूल जाना है। इतने तक की बाबा कहते हैं इस देह को भी भूलना है, देहभान छोड़ना है, देही अभिमानी होकर रहना है, और मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये मंत्र पक्का करना है। घर बार में भी जब रहते हो ट्रस्टी बन कर रहो, या सेंटर पर भी जो रहते हैं निमित्त बन कर रहे कि बाबा करावनहार है, मैं कर रहा हूं। तो लौकिक को भी अलौकिक में बदल कर ऐसा उनसे व्यवहार करना है, नहीं तो लौकिक से भी आपकी अपेक्षा रहेंगी, उनकी भी अपेक्षा रहेंगी। इसलिए नष्टो मोहा का पाठ यहां से पक्का करके जाना, सब कुछ बाबा का है, तन मन धन सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। जब आप एक बार बलिहार जाएंगे, बाबा प्रॉमिस देते हैं मैं 21 बार बलिहारी जाऊंगा, तो यहाँ फरिश्ता बनकर घूमना ये भी एक आपको यहाँ से सौगात दे जानी है, सूक्ष्म सौगात, फरिश्ते का ड्रेस। तो अपने आप को फरिश्ता समझकर घूमना, औरों को आत्मिक रूप से देखना, और जो अनुभूति अब तक नहीं की है वो यहां करके जाना, क्योंकि बाबा को हम कहते हैं माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु साजन, ये सब का अनुभव यदि नहीं किया है तो लक्ष्य रखना है कि सारा दिन एक्सपेरिमेंट करना है कि बाबा को उस संबंध से देखें, बच्चा भी बनाना है, बाप भी बनाना है, माता भी, साजन भी, चाहे भाई भी हो बाबा को साजन बनाना है, भी खुद को सज्जनी बनना है। तो यहां से इतनी शक्ति भर के जाना, बाबा से सब वरदान लेके जाना, बाबा के वरदान है, धनवान बना, ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनो, पुत्रवान बनो, अर्थात बेहद के रचता समझकर बेहद की रचना करो, आयुष्मान भव, अर्थात ज्ञान की हमारी लंबी आयु रहे, जब तक जिए तब तक बाप का हाथ पकड़ करके चले और निरोगी काया रहे, अर्थात माया की बीमारी ना लगे। तो वरदानी बाप हमें वरदान तो देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उस वरदानों को जीवन में लाना है, और जितना उसको जीवन में लाएंगे, विधि पूर्वक हम जीवन जिएंगे, तो हमारी हर बात में सफलता होगी। और नेचुरली है, लक्ष्य है बाप समान बनना। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सबका लक्ष्य है हमको लक्ष्मी नारायण बनना। इस पढ़ाई का यही लक्ष्य है, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। तो इसलिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहां से ही तीव्र पुरुषार्थ शुरू कर देना, ताकि वहां ये पुरुषार्थ चलता रहे। तो आप कोरोना काल में यहां आए हो, तो थोड़ा ये ध्यान रखना, मास्क सदा पहन के रखना और डिस्टेंस रखना है, एक के बाजू में एक नहीं बैठे। अभी कहा तो भी ये दो भाई नजदीक नजदीक बैठे, बीच में एक जगह खाली करो। हिंदी समझते हैं ना, एक के बाजू में एक क्यों बैठे हो, थोड़ी एक इतनी जगह है। और कल से क्या करना, भाई लोग सब वहां बैठे, क्योंकि माताएं बहुत है और सवेरे मुरली क्लास में और भी आएंगे, तो भाई लोग वहां बैठे और फर्स्ट रो में टीचर्स ही बैठे। और ये रो है ना, फर्स्ट रो, वो मधुबन वासियों के लिए है, ज्ञान सरोवर वासियों के लिए है। तो मुरली क्लास में ऐसे बैठे, दूसरे क्लास में आप बल्ब अपनी भट्टी में पहली रो में बैठ सकते हैं। तो यहां से आप भरपूर होके जाएंगे और वहां जाके जो ज्ञान यहां लिया है वो औरों के ऊपर बरसाएंगे, ये उम्मीद है। और आपको देखकर आपके घर वाले या सेंटर वाले कहे कि ये तो फरिश्ते बनकर आए, ऐसे इतना परिवर्तन यहाँ 4 दिन की भट्टी में करना है। क्योंकि जैसे गीत में सुना कि शुरू में तो दादियों को 14 साल की भट्टी मिली, हमें 4 दिन की ही भट्टी मिली है। तो उस 4 दिन में खूब तपस्या करके अपना लक्ष्य हासिल करके जाओ, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति। अब हम आपसे छुट्टी लेंगे
जी। दीदी हमारे बीच से छुट्टी लें, लेकिन उससे पहले अश्योर करें सभी दीदी को एक हाथ हिलाकर कि दीदी आपने जो भी कहा है वो हम सब जरूर करेंगे, पालन करेंगे और जरूर यहाँ से फरिश्ते बन करके जाएंगे। एक बार फिर से हाथ हिलाकर दीदी को अश्योर भी करें और दीदी हमसे छुट्टी ले रहे हैं। बाबा ने ज्ञान सरोवर को वरदान ही दिया हुआ है कि यहाँ जो भी आएंगे फरिश्ते स्थिति का सुंदर अनुभव करके जाएंगे, साधारण स्थिति में आएंगे और फरिश्ते स्थिति का अनुभव करके जाएंगे। तो ये हमारे लिए सचमुच बहुत सुंदर वक्त है। जैसे दीदी ने कहा, सौगात कौन सी मिली आपको? स्थूल सौगात तो बाद में मिलेगी। दीदी ने कौन सी सौगात दी? फरिश्ते की ड्रेस। तो इस ड्रेस को अलमारी में नहीं रखना है, इस ड्रेस को यहाँ से, इस हॉल से हम पहन करके ही जाएंगे। लाइट के चमकीले ड्रेस धारे, डबल लाइट फरिश्ते। फरिश्ते कैसे चलते हैं, फरिश्ते कितनी कैसी बातें करते हैं, कितनी हल्की, ताकि वो सुनाई भी ना दे किसी को। अपने में मस्त रहते हैं, ईश्वर की धुन में रहते हैं और अपनी लाइट माइट सारे संसार में फैलाते रहते हैं। तो इसे एक बेस बना लें, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट का ड्रेस धारी हूँ और ये चारों तरफ का जो वातावरण है, ये वातावरण भी आपको इसमें मदद कर रहा है। अभी आप बादलों के नीचे नहीं हैं, अभी आप बादलों के ऊपर हैं, है ना? कहते हैं ना, आसमां को छू लो, तो अभी आप आसमां के ऊपर हैं, राइट? तो आप ऐसी ही सुंदर स्थिति में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। अगले तीन दिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम सबको ध्यान भी देना है, तो सूचनाएं जिन पे आपको ध्यान देना है उसके लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्यारे संजय भाई जी को। संजय भाई जी 1990 से बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। 92 में ही आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बाबा के यज्ञ में, ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर के आप आदि रत्न हैं। ज्ञान योग में बहुत गहन आपकी रुचि है, एक्सपेरिमेंट्स करने में आपकी बहुत गहन रुचि है और यही कारण है कि प्यारे बाप दादा ने आपको जो मधुबन में स्पार्क विंग है उसका हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर का ताज पहनाया है। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय संजय भाई जी से कि अगले तीन दिन हमें जिन जिन बातों का ख्याल रखना है उन बातों से हम सबको सूचित करें। संजय भाई जी।
ओम शांति। एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ भट्टियों की शुरुआत हुई है और आप सब विशेष लकी आत्माएं हैं जिनको प्रारंभ में ही आने का मौका मिला है, क्योंकि जिस तरह से अभी संसार का सिनेरियो चल रहा है, कब सेवाएं बंद हों कब शुरू हों कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जितना समय मिले उसमें एक अच्छी तपस्या कर लेना हम सबके लिए एक बहुत आवश्यक चीज है, बल्कि नीड ऑफ द टाइम है। अभी हम तो कहेंगे कि ज्ञान के विस्तार में जाने का भी समय नहीं है, जितना हम योग की गहराई में जाएं वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए आप सब आए हैं और आज उसका उद्घाटन सत्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मानसिक रूप से इस भट्टी के लिए, अगले तीन दिनों की भट्टी के लिए तैयार हो चुके हैं। तो एक सुंदर भट्टी करनी है, उसकी एक दिनचर्या बनी हुई है, आप सबको दिया गया है। उम्मीद करता हूं सबको एजेंडा मिला होगा, जिसको ना मिला हो वो एजेंडा ले लेंगे क्लास के बाद या कभी भी समय निकाल करके ले लेंगे। आप सबने एजेंडा पढ़ा भी होगा। एजेंडा बनाते समय खास ध्यान रखा गया है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो एजेंडा, और दूसरी चीज का ध्यान ये रखा गया है कि इसमें हम योग के स्लॉट्स ज्यादा रखें। आजकल ज्ञान के सोर्सेस तो बहुत हैं हमारे पास, हर एक के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब, फेसबुक या और माध्यमों से हम सबको क्लासेस तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए हम लोग कहीं ना कहीं योग बहुत कम कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमको योग करना है, और उसके लिए ध्यान रखा गया है कि आपको अधिक से अधिक समय योग के लिए दिया जाए। साथ में बहुत टाइट शेड्यूल नहीं रखा गया है, ताकि आप यहाँ बाबा के घर में आए हैं तो यहाँ के वातावरण को भी आप महसूस कर सके। ये भगवान का घर है, भगवान का अवतरण भूमि है, और अपने आप में ये एक दुनिया से अलग संसार है, जहाँ के कण कण में आध्यात्मिक शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति समाई हुई है। और ऐसे वातावरण में यदि हम शांत चित्त होकर के, एकाग्रचित होकर के अगर थोड़ा समय बैठते भी हैं, तो भी आत्मा को एक बहुत बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो वातावरण का भी अपना एक प्रभाव है। आप अगले 3-4 दिनों तक यहाँ हैं तो काफी कुछ इस वातावरण से भी आप ले सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए दिनचर्या आपकी बनाई गई है। आप सबने पढ़ा होगा, मैं संक्षेप में उसको ब्रीफ कर देता हूँ। आपकी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू होगी। वैसे ऑफिशियली तो उठने का 3:30 बजे गीत बजता है, लेकिन आप सब 3 बजे उठेंगे और तैयार होकर के 3:30 बजे यहाँ आएंगे। 3:30 से 4:45 बजे तक सामूहिक योग यहाँ पर चलेगा। जो भी आपके कार्यक्रम है सब यहाँ पर ही चलेंगे। तो आप सब 3:30 से 4:45 बजे तक योग करेंगे। उसके बाद योग के पश्चात आप लोग स्नान आदि के लिए जाएंगे। वापस फिर 6 बजे आप यहाँ ही आएंगे। 6 से 6:30 बजे तक यहाँ पर आप सबको आधे घंटे के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज कराई जाएगी। हमारे साउंड डिपार्टमेंट के सुरेश भाई हैं, गीत और संगीत के माध्यम से कैसे हम एक्सरसाइज करें, बहुत सुंदर एक्सरसाइज कराते हैं। उनके पास म्यूजिक और सॉन्ग्स का एक अच्छा कलेक्शन है, जिसके माध्यम से बहुत सुंदर एक्सरसाइज, बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज, क्योंकि अगले 3 दिनों तक आपको यहाँ बैठना ही है, आपके पास अपनी कोई लौकिक प्रवृत्ति नहीं है, तो सारा दिन बैठने से शरीर कई बार बोझिल हो जाता है। तो थोड़ा सा यदि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम सारे दिन के लिए फ्रेश रहते हैं। तो 6 से 6:30 आधा घंटा हम इसी हॉल में एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बाहर तो अभी बारिश है, नहीं तो हम लोग प्लाजा में करते हैं। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक सबका सामूहिक योग होगा। फिर 7 से 8 मुरली, मुरली के बाद थोड़ा समय मुरली का रिवीजन किया जाएगा 10-15 मिनट, और फिर आप सब नाश्ते पर जाएंगे। वापस 9:30 बजे फिर से आप यहाँ आएंगे। 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे का एक गाइडेड मेडिटेशन होगा। फिर 10:00 से 10:15 बजे तक एक क्लास होगा। फिर एक 15 मिनट के ब्रेक के बाद 11:30 से 12:30 बजे तक एक कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी या कोई ना कोई एक्टिविटी वर्कशॉप वगैरह कराई जाएगी, क्योंकि वो समय थोड़ा भारी समय होता है। तो कुछ ज्ञान का चिंतन, कुछ ऐसी आपकी बुद्धि चले जो हमारे योग में मदद करे, तो कोई एक्टिविटी के माध्यम से आपको कोई वर्कशॉप आदि कराया जाएगा। 12:30 बजे ऑलमोस्ट दोपहर का सेशन पूरा हो जाएगा, और आप 1 बजे तक, लेटेस्ट 1 बजे तक भोजन के लिए जाएंगे। 1 से 4 बजे तक आपके पास समय है, आप उसमें भोजन करके थोड़ा विश्राम भी करेंगे। फिर 4 से 4:30 चाय पी करके वापस आप सब इसी हॉल में आएंगे। फिर 4:30 से 5 बजे तक फिर से सामूहिक योग रहेगा। कोई ना कोई एक भाई या बहन आपको एक बहुत सुंदर गाइडेड मेडिटेशन पे ले जाएंगे। अगेन 5 to 5:15 क्लास रहेगा। हर रोज केवल 2 क्लास रखे गए हैं, एक सुबह के सत्र में, एक शाम के सत्र में, बाकी वर्कशॉप और योग ज्यादा से ज्यादा रखा गया है। तो क्लासेस केवल 2 ही होंगे। तो 5 से 6:15 बजे तक क्लास रहेगा और 6:15 से 6:30 छोटा सा ब्रेक, फिर 6:30 से 7:30 बजे तक प्रतिदिन नौमा शाम का योग होगा। अमृत बेला और नौमा शाम, आप जानते हैं ये दोनों ही हम सबके ईश्वरीय जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और ये दोनों ही समय योग के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है और यहाँ का वातावरण बहुत ही अलौकिक और दिव्य होता है। अधिक से अधिक भाई बहने जिनको जरूरी कारोबार है उनको छोड़ करके सब योग में आते हैं तो एक बहुत सुंदर अलौकिक वातावरण रहता है। ये दो समय आप खास बहुत चाहे तो अपने मन को एकाग्र करके बाबा से बहुत आत्मबल ले सकते हैं, तो इन दो समय पर आप बहुत योग को रुचिपूर्वक करेंगे। फिर 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा का ये जो स्लॉट है उसमें कोई ना कोई आपको गेन एक्टिविटी या कुछ छोटा सा अनुभव शेयरिंग कराया जाएगा और आपकी दिनचर्या 8:15 तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको वापस यहाँ नहीं आना है। भोजन करके आप लोग अपने ईज अनुसार बाबा के कमरे में जा करके 9 से 9:30 तक बाबा को गुड नाइट करके और फिर विश्राम पर जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि बहुत लेट तक आप ना जगें क्योंकि आपकी दिनचर्या जल्दी शुरू होती है तो जल्दी सोना आवश्यक है। घर में भल कईयों को देर से सोने की आदत होती है परंतु यहाँ आप 10 बजे से पहले पहले अपने कमरों में चले जाएं, सो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से संक्षेप में ये 3 दिनों की आपकी दिनचर्या रहेगी। लास्ट दिन 2 तारीख को सूर्य भाई जी के साथ एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखा गया है, उसमें आप चाहें तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि वो प्रश्न पहले से ही एक पेपर पर लिख करके यदि आप सुमन बहन जी को, रूपेश भाई जी को दे दें तो उसको सॉर्ट आउट करने में अच्छा रहेगा। और एक सुझाव ये रहेगा कि हम सबके जीवन में समस्याएं तो बहुत हैं और समस्याएं हम जानते हैं कि वो योग से ही समाप्त होती हैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न हम ना पूछें, वो तो समाधान के माध्यम से और कई माध्यमों से भाई जी के क्लासेस से वो हमको मिलते ही रहते। हम अपने पुरुषार्थ को गहराई में कैसे ले जाएं, हमारा पुरुषार्थ उन्नति को कैसे प्राप्त हो, हम पुरुषार्थ से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये भट्टी है, इसमें योग तपस्या की गहन चीजों को अगर समझ करके आप जाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। वो समझ, वो तप ही आपकी समस्याओं को सॉल्व करता जाएगा। तो समस्याओं से जुड़े प्रश्न ना पूछ करके यदि आप पुरुषार्थ से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो संक्षेप में ये 3 दिनों की दिनचर्या थी, कुछ सूचनाएं हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं, हम वो भी बता देते हैं। कृपया इन 3 दिनों के दौरान आप जरूर इस पर भी ध्यान रखेंगे। बार बार चर्चा की गई है यहाँ पर, सुमन बहन जी ने भी किया और दीदी ने भी, मोबाइल का मौन, 3 प्रकार का मौन बताया ना सुमन बहन जी ने, मन का, मुख का और मोबाइल का। तो मन का मौन वो तो धीरे धीरे आएगा, प्रयास रखें कि 3 दिन के बाद जब आप चाहें तो आपका मन पूरी तरह से मौन हो चुका हो। मुख का मौन हम हठपूर्वक भी रख सकते हैं और हमें रखना भी चाहिए। एक साधक के जीवन में मौन बहुत इम्पोर्टेंट है। कम बोलना, संतुलित बोलना, धीमा बोलना, ये बहुत ही हमारी साधना को बल देता है। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी मिलते हैं, हमारे इतिहास में भी मिलते हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि इन 3 दिनों में आप मौन को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, इसलिए अपनी खुशी प्रकट करने के लिए आपने आज तो भरपूर ताली बजाई, कल से क्या करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, एक हाथ की ताली। कैसे बजाते हैं एक हाथ की ताली? हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वातावरण को जितना हो सके हम ध्वनि से दूषित नहीं करेंगे। यहाँ के वातावरण में शांति के प्रकंपन हैं, हम किसी भी प्रकार की ध्वनि से उसको दूषित नहीं करेंगे। तो आज खुशी का मौका हम सबके लिए, हमारा सारा जीवन ही खुशी का जीवन है, तो हमने ताली आज बजाई। लेकिन कल से जब भी आप अपनी खुशी प्रकट करेंगे, एक हाथ की ताली से करेंगे और इस मुख के मौन के साथ साथ आप मोबाइल को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देंगे। अगर संभव हो सके तो आप मोबाइल यहाँ लेकर के ही ना आए, क्योंकि कई लोग स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। बीच बीच में जब वो मोबाइल से बजते हैं तो लोगों को डिस्टर्ब होता है। आप सोचें, कोई बहुत अच्छी अवस्था में योग में बैठा हो, मोबाइल बजा और वो एकदम से ऊपर से नीचे उतर करके उतर के नीचे आ जाए, तो हम कहीं ना कहीं या हमारा मोबाइल भगवान से हमारा कनेक्शन तोड़ने के निमित्त बनता है। अब ये सूक्ष्म में इसको क्या कहेंगे, पाप कहेंगे पुण्य कहेंगे? बाबा के कमरे में हम बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं बहुत मगन अवस्था में, किसी एक का मोबाइल बजता है और 50 लोगों का कनेक्शन टूट जाता है, ये क्या है? ये भी एक सूक्ष्म पाप है। बाबा इसीलिए कहते हैं कर्मों की गति को बहुत ध्यान से समझना है। तो अनुरोध ये रहेगा कि अगले 3 दिनों तक आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैग में डाल दें, या जेब में भी रखना है तो सावधानी पूर्वक ऑन न रहे, ऑफ रहे। और जिसको भी सूचना देनी है घर वालों को, आज ही आप सूचना दे दें, भाई हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं बाबा के घर में, 3 दिनों तक भट्टी है, हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। साथ साथ आपके भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर 2 नंबर डाइनिंग हॉल में रखी गई है, आप सब समय से अपना भोजन जरूर कंप्लीट कर लें। नाश्ता 8 बजे से 9 बजे तक रहता है, दोपहर का भोजन 12 बजे से 1:30-2 बजे तक रहता है, और रात्रि भोजन 7:30 से 9 बजे तक। कृपया आप लोग समय के अंदर यदि अपना मील कंप्लीट कर लेंगे तो जो डाइनिंग के सेवाधारी भाई बहने हैं उनको वाइंड अप करने में, उसको क्लीन करने में, नेक्स्ट मील को अरेंज करने में उनको सहजता रहती है। तो अनुरोध रहेगा कि आप लोग समय से भोजन जरूर कर लें। चाय की जो व्यवस्था है वो बीच वाले फ्लोर पर सबके लिए एक साथ रहती है, सुबह 3:30 बजे चाय रख दी जाती है, शाम को भी करीब 4 बजे चाय रहती है। तो आप सब चाय के लिए बीच वाले फ्लोर पर जाएंगे। हर सेशन के लिए आपको बार बार ना कहना पड़े कि टाइम से आए टाइम से आए, क्योंकि आप सब अपने सारे लौकिक कर्तव्यों से अभी फ्री हैं, आपके पास एक ही काम है, केवल साधना करना। आपको खाना भी नहीं बनाना है, आपको यहाँ कपड़े भी नहीं धोने हैं, क्योंकि आप सब उतने ड्रेसेस तो लाए ही होंगे, बाहर कहीं जाना नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो आप सब बहुत ही लगनशील होकर तत्परता से ये भट्टी करेंगे, और समय से 5 मिनट पहले, जब हम लक्ष्य लेकर के ही आए हैं कि कुछ पाना है तो पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। तो समय का आप सब जरूर ध्यान रखेंगे, खास करके अमृत वेले आप सब साइलेंस जरूर मेंटेन करेंगे। अक्सर हर ग्रुप में कहीं ना कहीं ये शिकायत आती है, कुछ लोग, सभी लोग नहीं पर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अमृत वेले चलते चलते बात करते रहते हैं, इससे आसपास जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत डिस्टर्ब होता है। तो खास करके अमृत वेले जब आप चलते भी हैं तो चलने का भी मौन, बहुत तेज चलना, चप्पल की आवाज करते हुए चलना, ये भी एक अलौकिकता नहीं है। और कहीं ना कहीं जब सुबह का वातावरण बहुत शांत होता है तो ये छोटी छोटी चीजें ना दूसरों को डिस्टर्ब करती हैं, वातावरण को डिस्टर्ब करती हैं। तो अमृत वेले कोई भी बात ना करें। मास्क के लिए तो दीदी ने बताया ही, रुपेश भाई ने भी बताया, इधर भाइयों की तरफ जगह काफी है, तो कल से भाई अगर सारे इस साइड बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माताओं की संख्या इसमें ज्यादा है। आप सबको बैज मिला होगा, आप सब अपने इस प्रवास के दौरान बैज जरूर लगा करके रखें और जाने से पहले उस बैज को रिटर्न करके जाएं ताकि वो बैज फिर आगे के कार्यक्रम में काम आ सके। और एक खास रिक्वेस्ट ये आप सब से रहेगी कि आप सब वैसे तो स्विच ऑफ करके रखने के लिए आपको ये डायरेक्शन दिया गया कि मोबाइल स्विच ऑफ रखें, फिर भी कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, अभी भी कुछ लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि अभी संसार की हालत अच्छी नहीं है, कोरोना के कारण गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं संस्थाओं के लिए। हम लोग अपने उमंग उत्साह में भट्टियों के फोटोज इधर उधर भेज देते हैं और कई बार अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास वो फोटो चले जाती है तो बाद में यहाँ हम लोगों को दिक्कत होती है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हैं तो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरह हम तो नहीं फॉलो कर पाते, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का है, हम डाइनिंग में भी नज़दीक नज़दीक बैठ जाते हैं। ठीक है, घर की बात है, जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क भी पहने, लेकिन अपने घर की ये तस्वीर जो हम बाहर भेजते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ना भेजें, अपने यादगार के लिए भर रखें। कई बार हमें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि फोटोग्राफी ना करें, और अगर कभी किया भी तो उसको इधर उधर शेयर ना करें। और जाने से कम 24 घंटा पहले, खास टीचर्स मैंने ध्यान रखें कि आप अपने जर्नी फूड का स्लिप जरूर डालें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा रेलवे स्टेशन आदि के लिए चाहिए हो या बस स्टैंड के लिए, तो उसको भी आप 24 आवर बिफोर जरूर आप सबमिट कर दें। जो लोग गाड़ियों से आए हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से आए हैं, वो लोग अपनी गाड़ियां इधर उधर पार्क न करें। यहाँ पर कुछ पार्किंग एरियाज बने हुए हैं, आप अपनी गाड़ियों को वहीं ही पार्क करें, न तो कई बार फिर प्रॉब्लम होती है दूसरी गाड़ियों को तो अनाउंसमेंट कराना पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। आप सब बाबा के घर में आए हैं, यहाँ का वातावरण अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल 3 दिनों तक स्वस्थ रहेंगे भी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो तो हमारी डिस्पेंसरी है, उसकी सेवाएं सदैव चालू रहती हैं, निसंकोच रूप से आप वहां जा करके आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। और एक आखिरी अनाउंसमेंट कि वैसे तो बारिश से बाहर जाने का उतना कोई प्रयोजन बनता नहीं है, लेकिन अगर कभी वेदर खुले भी तो रात्रि के समय में आप लोग ज्ञान सरोवर के गेट से बाहर ना जाएं। ये जंगली एरिया है, वैसे भी बारिश का समय है, इधर थोड़े हिंसक जानवर होते हैं तो कैजुअलिटीज होती रहती हैं। तो आप सबसे विशेष अनुरोध ये रहेगा कि अंधेरा होने के बाद आप लोग ज्ञान सरोवर के गेट से बाहर ना जाएं। तो इस तरह से ये कुछ सूचनाएं हैं जिन पर आप सब बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और हमारी ये शुभ भावना है कि अगले 3 दिनों तक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी रहते हुए आप सब ये भट्टी करें और जितना हो सके बाबा के घर से आत्मबल भर करके जाएं, ताकि आप जहाँ भी जाएं वहाँ की आत्माओं के लिए एक सपोर्ट बन पाएं। आज का वातावरण हम सब देख रहे हैं, चारों तरफ दुख शांति भय का वातावरण है, और बाबा ने कहा हुआ है कि मेरा एक एक बच्चा जहाँ भी होगा वहाँ के लोगों के लिए सपोर्ट होगा, वहाँ के लोगों के लिए सहारा होगा। तो हम सब लक्ष्य रखें कि हम सबको सहारा बनना है अपने आसपास के लोगों के लिए, तो उसके लिए आत्मबल से भरपूर होना बहुत जरूरी है। तो इन 3 दिनों में हम जितना भर सकते हैं उतना अपने आप को भरेंगे और योग तपस्या करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जी, आपने क्या क्या अगले 3 दिनों तक हमें ध्यान रखना है बहुत सुंदर तरीके से सबके सम्मुख रखा है, और खास करके हम बाबा से मिलन मनाने आए हैं, इसलिए गेट से बाहर नहीं जाएंगे, ना तो भालू से मिलन हो जाएगा तो इसीलिए हम सब बाबा से ही मिलन की अच्छी लगन की अग्नि में डूबे रहें। और अब हम देख रहे हैं हमारे बीच एक ऐसी विभूति, मैं कहूंगा ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला हो शाम से। आदरणीय सूर्य भाई जी, आपके आते ही एक अलौकिक प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, यद्यपि आपको दिख नहीं रहा होगा मास्क के कारण। एम आई राइट, मुस्कान आ गई है? हाँ, मुस्कान आ गई है ब्रदर जी। आपके आते ही एक सुंदर समाधान आ जाता है। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आदरणीय भ्राता जी का मार्गदर्शन, आपके ज्ञान के सुंदर अनुभव प्रकाश हम सबको सतत प्राप्त होता रहता है, और अगले 3-4 दिनों तक भी आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। रोज अमृत वेले भ्राता जी ही आपको योग कराएंगे, तो इस पे तो ताली बनती है ना। रोज अमृत वेले भ्राता जी आपको सुंदर वतन की सैर कराएंगे, बाबा की याद में डुबाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हम सबके अति प्यारे